इस्लाम में बालाधिकार।
श्रोताओं, इस्लाम में बाल अधिकार की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
बाल अधिकार मानवाधिकार का ही हिस्सा है। मानवाधिकार को समझने के लिए जरूरी है कि इंसान को समझा जाए और बच्चे की विशेष स्थिति के मद्देनज़र उसकी पहचान की अहमियत बढ़ जाती है। बच्चे के अधिकार हैं लेकिन वो उनकी रक्षा में सक्षम नहीं होता, इसलिए बच्चे और परिणाम स्वरूप उसके अधिकार को पहचानने के लिए ईश्वरीय संदेश वाही की मदद बहुत प्रभावी है, क्योंकि ईश्वरीय संदेश वाही बाल अधिकार को समझने के लिए व्यापक क्षितिज हमारे सामने खोलती है। इस विषय में हर चीज का ध्रुव ईश्वर की हस्ती है, जिसने इंसान को पैदा किया और वही इंसान के वजूद के विभिन्न पहलुओं और उसकी जरूरतों से पूरी तरह अवगत है।
इस्लामी शरिया में इंसान और उसके अधिकार को विशेष अहमियत दी गई है। मानवाधिकार और इंसान की मर्यादा को अहमियत देना इस्लाम का अहम उद्देश्य है। मानव जीवन के आरंभ का सबसे अहम व मूल चरण बचपन है। इस्लामी शिक्षा में सभी बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, निर्धारित अधिकार दिए गए हैं और सभी को उनके साथ हिंसक व निर्दयी व्यवहार से मना किया गया है। इस्लाम जिस दौर में आया है वो दौर इंसानों और उसके नतीजे में बच्चों के लिए बहुत ही हिंसा का दौर था। अरब प्रायद्वीप में इस स्थिति में इस्लाम का उदय हुआ कि उस अंधकारमय दौर में अरब बेटियों के वजूद को अपने लिए कलंक समझते और उन्हें जीवित कब्र में दफन कर देते थे। पवित्र कुरान की कुछ आयतों से तो ये अर्थ भी निकलता है, बेटों की भी निर्धनता के डर से हत्या कर देते थे।
इस्लाम से पहले अरब और दूसरी जातियों के बीच बच्चों की स्थिति उचित नहीं थी और वे बुनियादी अधिकारों से भी वंचित थे। वे निर्धनता और जीवन निर्वाह के खर्च के डर से बच्चों को मार डालते थे। इस बीच बेटियों की स्थिति अधिक दयनीय थी। अरब में कुलीन वर्ग के लोग भी बेटियों के वजूद को अपने लिए कलंक समझते थे और उन्हें जिंदा दफन कर देते थे, जैसा कि इस बारे में ईश्वर पवित्र कुरान के नहल सूरे की आयत नंबर 58 और 59 में कहता है, और जब उनमें से किसी को बेटी की शुभ सूचना मिलती है तो उसके चेहरे का रंग काला पड़ जाता है और वो क्रोध में डूब जाता है, लोगों से छिपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद किसी को क्या मुंह दिखाए, सोचता है कि अपमान के साथ बेटी को लिए रहे या मिट्टी में दबा दे। देखो कितना बुरा फैसला है जो वे करते हैं।
इस्लाम ने आकर न सिर्फ ये कि लोगों की इस बुरी आदत से रोका, बल्कि समाज में बच्चों की अहमियत को बढ़ाया और माँ बाप को बच्चों की हत्या से रोका और उन्हें बच्चों के साथ हमदर्दी करने पर बल दिया। पवित्र कुरान के इसरा सूरे की आयत नंबर 31 में आया है, गरीबी के डर से अपनी संतानों की हत्या मत करो, हम उन्हें और तुम्हें रोजी रोटी देते हैं, जान लो कि उनकी हत्या करना बड़ा अपराध है। जैसा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो हम में से नहीं है जो छोटों पर दया न करे।
बाल अधिकार के संबंध में पवित्र कुरान में अनेक आयतें मौजूद हैं जो चिंतन मनन के लिए प्रेरित करती हैं। एक अहम बिंदु जो बाल अधिकार के विषय पर चर्चा का मूल बिंदु बन सकता है और जिसे इस्लाम ने बाल अधिकार कन्वेंशन व बाल अधिकार घोषणा पत्र से सैकड़ों साल पहले बयान किया है, वो निसा नामक सूरे की आयत नंबर 9 में है, जिसमें ईश्वर माँ बाप से कह रहा है कि वे ऐसा काम ना करें जिससे बच्चा बीमार पड़ जाए, मुसीबत में घिरे, विकलांग या मानसिक पिछड़ेपन का शिकार हो जाए। ईश्वर निसा सूरे की आयत नंबर 9 में कह रहा है, और उन लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि वे अगर अपने बाद कमजोर व अक्षम संतान छोड़ जाते तो कितना परेशान होते, इसलिए ईश्वर से डरे और सीधी बात कहें।
इस्लाम ने बच्चे के हर तरह के हित को सुनिश्चित बनाने के लिए कर्तव्य व नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों का पालन बच्चे के दुनिया में आने से बहुत पहले शुरू होता है। इस्लाम ने समाज को योग्य संतान हवाले करने के लिए जीवन साथी के चयन के लिए नियम बताए हैं। इस तरह माँ के पेट में पलने वाले भ्रूण की रक्षा, स्वास्थ्य व विकास के लिए नियम निर्धारित किए हैं।
इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार माँ बाप के व्यवहार व शिष्टाचार का बच्चे की नैतिक विशेषताओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कुरान के कुछ व्याख्याकारों के अनुसार पवित्र कुरान ने इस तथ्य को ईश्वरीय दूत हजरत नूह की जबान से बयान किया है और नूह ने कहा कि हे पालनहार, धरती पर किसी नास्तिक को रहने न दे, क्योंकि अगर तूने उसे रहने दिया तो वे तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और बुराई के सिवा कुछ नहीं करेंगे।
इस्लाम ने गर्भ धारण के लिए भी नागरिक अधिकार व नियम निर्धारित किए हैं और इस दौरान बच्चे का समर्थन किया और माओं के अधिकार पर भी पूरा ध्यान दिया है। भ्रूण को जीने का अधिकार और उसका समर्थन गर्भ धारण के लिए अनुशंसा, गर्भ में पल रहे बच्चे का मीरास पाना, गर्भवती महिला को दंड देने में विलम्ब करना, ये सब बाल अधिकार हैं। गर्भवती महिला को दंड देने में विलम्ब पर इसलिए बल दिया गया है ताकि भ्रूण को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे।
इसी तरह इस्लाम में बच्चों की शारीरिक व मानसिक परवरिश पर भी बहुत बल दिया गया है, जैसा कि विवाह की भावना, गर्भाधारण के समय माँ के खान पान की शैली और बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत अनुशंसाएं की हैं। इस्लाम बल देता है कि परिवार का गठन सही आधार पर होना चाहिए ताकि स्वस्थ संतान की परवरिश में सफल हों।
अच्छे व सदाचारी संतान के पालन पोषण के लिए जरूरी है कि धर्मपरायण व नैतिक गुणों से सुशोभित जीवन साथी का चयन करें जो धार्मिक व सदाचारी परिवार में परवरिश पाया हो। भावी जीवन साथी के चयन में इन विशेषताओं को मद्देनजर रखना जीवन साथी के चयन के अहम बिंदु हैं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, चार बातों को मद्देनजर रखकर जीवन साथी का चयन होता है, धन संपत्ति, कुल व परिवार, सौंदर्य और धर्मपरायणता। तुम लोग सदाचारी व धर्मपरायण जीवन साथी का चयन करो क्योंकि इससे बरकत होगी।
चूंकि बच्चा अपने अधिकार की रक्षा और उसकी प्राप्ति में सक्षम नहीं होता, इस्लाम ने माँ बाप शासन और शासक पर बाल अधिकार की रक्षा पर बल दिया है। इस्लाम ने अनाथ बच्चों पर भी ध्यान दिया है और उनके लिए व्यवहारिक कार्यक्रम पेश किया है। अनाथ बच्चों की हालत पर धर्म में अहमियत, लोगों को अनाथ बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार और उनके प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना, ऐसा समर्थन है जो इस तरह के बच्चों को बुरे रास्ते पर जाने से बचाता है।
एक जुमले में अगर बाल अधिकार के बारे में इस्लाम के उद्देश्य को बयान करना हो तो ये कहेंगे कि इस्लाम ने बच्चों के उच्च हितों को सुनिश्चित बनाया है। धार्मिक दृष्टि से माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चों से संबंधित हर फैसले में उनके हितों को मद्देनजर रखें। इस बिंदु का उल्लेख भी जरूरी है कि इस्लाम ने 1400 साल पहले बाल अधिकार को अहमियत दी और इस संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पवित्र कुरान में 216 आयतें मौजूद हैं। इसी तरह बाल अधिकार के संबंध में 3000 से ज़्यादा रवायतें मौजूद हैं। इसी तरह इस्लामी धर्मशास्त्र में बाल अधिकार के 60 विषयों पर चर्चा हुई है। ये विशेषता इस्लाम को हासिल है कि उसने बाल अधिकार के संबंध में इतने विस्तार से चर्चा की है और इन सभी विषयों को स्पष्ट तरीके से बयान किया जाए तो ये बाल अधिकार को व्यवहारिक बनाने के लिए बहुत लाभदायक होगा।
इस्लाम ने उस समय बाल अधिकार का विषय उठाया जब न तो किसी तरह के संगठन या अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का वजूद था। इस्लाम ने बच्चे की सभी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक जरूरतों के मद्देनज़र बच्चों के बहुआयामी विकास की पृष्ठभूमि मुहैया की है।